ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुकवाच साहुबली श्रीशुकवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदये जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यतयेतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि जस्मिन्निदम् यतश्चेदम् येनेदम् यदम् स्वयम् यस्मात् परस्मात् परस्तम् प्रपद्ये स्वयम् भुवम्। यः स्वात्मनिदम् निजमाये अर्पितम् क्वचिद्विधातम् क्वचित्तिरोहितम् अभिन्ददीक्षाच्छुभयम् तदीक्षते स्वयात्ममूलोऽवतु माम् परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतश्नसो पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनम् गभीरम् यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभो। न यस्य देवा ऋषयः पदम् विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमेरितम् यथा न तस्या कृतिभिर्विचेष्टत दुरात्यानुक्रमसमावतो। ये पृष्ठ 11 पर चल रहा है, 11वें पृष्ठ पर। एक दो भक्त खोजते हुए हैरान हो रहे थे कि कहाँ है। विद्रीक्षा जस्य पदम् सुमङ्गलम् विमोक्त सङ्गामुनया सुसाधवा चरन्त्यलोक व्रतमव्रणम् वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गते। न विद्यते जस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्तु सत्यये अरूपायोरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो गिराम्बिदो प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम्बिदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम् सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतरे अष्टाक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमानाय महानवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारिछन्न चिदोष्म पाय तक्षोभ विस्फोजितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक प्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो दयाय श्वासेन सर्वतन्त्रे मनसि प्रतीतः प्रत्यदृशे भगवते बृहते नमस्ते। मतलब पानी चाहिए, मैं सौंफ का रस पिया पानी नहीं पिया तो जीव में मुंह में भरा हुआ है। आत्मात्मजाप्यगृहवित्त जने सुसक्ते दुष्प्रापणाय रोषंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमेश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तैष्टां गतिमानुवन्ति किं त्वा शिशोरात्रपि देहमव्ययम् करोतु मे दग्रदयो विमोक्षम् एकान्तिनो जनकञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवः प्रपन्नः अत्यद्भुतम् तच्चरितम् सुमङ्गलम् गायन्तयानन्दसमुद्रमग्नम् तमाक्षम् ब्रह्म परम् परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियम् सूक्ष्मनियाति दूरम् अनन्तमाद्यम् परिपूर्णमीरे यस्य ब्रह्मादयो देवा देवा लोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलतव्या कलया कृतः यथाच्युस्वग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृस्वरोचिषम् तथा यतो यत् गुणसम्प्रवाहो बुद्धि मनः कानि शरीरसर्गः सवैन देवासुरमर्तितिर्यम् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तु नायम् गुणः कर्म न सन्न चासम् निषेधशेषो जयतागशेष जिजीविषेना निहामुया किम् अन्तर्बहिष्यावृतये वजन्या इच्छामि काले न दर्श्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणश्रमोचन् सोऽहम् विश्वसृजम् विश्वम् अविश्वम् विश्ववेदसम् विश्वात्मानमजम् ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम् पदम् योगरम्भितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयम् प्रपश्यन्ति योगेश्वरम् तम् नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमशय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कवीन्द्रियाणामनवाप्यवत्मने नायम् वेदास्वमात्मानम् यक्षत्याहम् धियाहतम् तम् दुरत्ययमाहात्म्यम् भगवन्तम् इतोऽस्म्यहम्। यहाँ से आवृत्ति चालू करें। योगरंधित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनोऽयम् प्रपश्यन्ति योगे संतम नतोस्नेह नमो नमस्तुभ्यमशैयवेग शक्ति त्रयाय खिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत सत्ये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धियाहतां तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते जदोपशसि पूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन् निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयि सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन समूह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदास यतो गजेन्द्रः स्वन्तः सरसुरबलेन गृहीतयात् दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतेज सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यताम् हरिरमुच मुचदुष्पुत्स्त्रियाणाम् अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीशुक उवाच तदा देवर्षि गन्धर्वा ब्रह्मेशालपुरोगमः निमुचुः कुसुमासारम् स्वसन्तः कर्म तद्हरेः मे दुर्दुन्दुभयो दिव्यः गन्धर्वानृतुर्जगुः ऋषयश्चारणः सिद्धः तुष्टुवोः पुरुषोत्तम योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्चर्यरूपधृक् मुक्तो देवर्षातेन भूर्गन्धर्व सप्तमः प्रणम्य शिरसाधीशम् उत्तम श्लोकम् अव्ययम् अगायत यशो धाम कीर्तन्य गुण सत्कथम् सोऽनुकम्पितैषेना परिक्रम्य प्रणम्यताम् लोकस्य पश्यतो लोकम् सुमगान्मुक्तकिल्बिषः गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपम् पीतवासाश्चतुर्भुजः सवै पूर्वमभूद् राजा पाण्ड्यो द्रविण सप्तमः इन्द्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णु व्रतपरायणः स एकदाराधन कालयात्मवान् गृहीत मौना व्रतमीश्वरं हरि मौना व्रत ईश्वरं हरि जटाधरस्तापशया प्लुतोच्छितम् समर्चयामास कुलाचलाश्रमः जदृच्छया तत्र महाजसा मुनिः समागमच्छिष्य गणैः परिश्रितः तम् वीक्षतु श्रीमकृतार्हणादिकम् रहाशुपासेन ऋषिश्च कोपः तस्मा इमं शापमदादसाधु अयम् दुरात्मा कृतबुद्धिरव्य विप्रावमन्ता विशतान्तमोन्धाम् जथा गजः स्तब्धमतिशयेव श्रीशुक उवाच एवं सत्त्वा गतो गस्त्य भगवान् नृपशानुगः इन्द्रदुम्नोऽपि राजर्षिः दिष्टम् तदुपधारयन् आपन्नः कौञ्जरीम् योनिम् आत्मस्मृतिविनाशिनी हर्यर्चनानुभावेन यद्गजत्वेऽप्यनुस्मृतिः एवम् विमोक्ष गजजूथपमब्जनाभः तेनापि पार्षद्गतिम् गणितेन युक्तः गन्धर्वसिद्धविबुधैरुपगीयमान कर्माद्भुतम् स्वभवनम् गरुडासनोगात् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोस्नेहम्। केला को भगवान कर इस श्लोक के पूर्व श्री गजेंद्र जी यह कहे हैं कि श्री भगवान जो इस जगत के ईश्वर हैं, इस जगत के निर्माता हैं, विश्व सृजन और विश्व स्वरूप हैं, इसके साथ ही साथ विश्व से बिल्कुल भिन्न है और विश्व उनका उपकरण है या धन है और वे विश्व के आत्मा हैं। ऐसे प्रभु को मैं केवल प्रणाम कर सकता हूं, मैं उनको जानता नहीं हूं। और अगले श्लोक में 27वें श्लोक में इसका कारण बता रहे हैं कि क्यों नहीं जानता। क्योंकि योग के बिना, योगम बिना दुर्गयत्वाद इत्यादि, कोई भी व्यक्ति बिना योग किए भगवान को नहीं जान सकता है। योग मतलब भक्ति, भक्ति योग, तो ऐसे वो कह रहे हैं योग रंभित कर्माणो हृदय योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोस्नेहम्। योगिनः योग विभाविते हृदि, योग रंधित कर्माण योगिन, योग विभाविते हृदि यम प्रपश्यन्ति तम योगेशम अहम नतः अस्मि। योग का अर्थ है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है, भगवान कहते हैं योग का अर्थ है भगवान से संयोग। भक्ति को ही योग कहा गया है। एक बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम योगी बनो। इसी की विशद, इसी का क्लियर अर्थ करते हैं भगवान बाद में कहते हैं मद भक्तो भव। तो भक्तो भव या योगी भव दोनों का एक ही अर्थ हुआ। भक्ति योग को ही वास्तव में योग कहा जाता है। तो उसी के विषय में गजेंद्र जी कहते हैं कि जब तक कोई भक्ति का आश्रय नहीं करता है तब तक भगवान को जानना बहुत कठिन है, अशक्य है। तो इसी को कहने के लिए कहते हैं कि योगी लोग भगवान को देखते हैं, प्रपश्यन्ति। कैसे देखते हैं? भक्ति योग का आचरण करते करते भगवान को श्रवण कीर्तन करते करते, भगवान को प्रणाम करते करते, भगवान की अर्चना करते करते, योग रंधित कर्माण, उनके सारे कर्म बंधन पाप ताप सब रंधित हो जाते हैं। रंधितानि कर्माणि दग्धानि, रंधित का अर्थ दग्ध हो जाना। जैसे कोई बीज होता है, बीज को यदि रंधित कर दिया जाए, भूंज दिया जाए, पानी में पूरा उबाल दिया जाए तो फिर अंकुर उत्पन्न नहीं कर पाता। तैसे ही भक्ति योग इतना समर्थ है कि जीव के सब प्रकार के कर्मबंधन को समाप्त कर देता है। यहां तक शास्त्र कहता है कि एक बार भगवान का नाम लेने पर अनंत अनंत जन्म के पाप ध्वस्त हो जाते हैं। कर्माणि निर्दहत किंतु भक्ति भाजा। ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस संसार में जितने भी इंद्र जीव हैं, इंद्र गोप से लेकर के इंद्र पर्यंत, ये सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस संसार में कर्म फल भोगना ही पड़ता है, ये नियम है भगवान का। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में हो जाता है, उनका नाम उच्चारण करता है, प्रणाम करता है, तो उसके सारे कर्मबंधन सारे पाप तक भगवान समाप्त कर देते हैं। कर्माणि निर्दहत किंतु च भक्ति भाजन। यस्त्रेन्द्र गोप मथलेन्द्र महोस्व कर्म बद्धान रूप फलभाजन मातनोति कर्माण निर्धत किंतु भक्ति भाजा गोविंद माद पुरुषम तम हम भजन। भगवान को कौन देख सकता है, जानने की बात तो अलग, देख लेगा व्यक्ति आंख से भगवान को देख सकता है, भगवान को अपनी भुजाओं में आलिंगन किया जा सकता है और भगवान को झूला झुलाया जा सकता है, भगवान को खिलाया जा सकता है और यदि ये गलती करें तो उनको उखल में बांधा जा सकता है। इतना सुलभ है भगवान। और परम सुंदर है, सुलभ है, परंतु मिलेंगे कैसे, कैसे उनका साक्षात्कार होगा। योगिनो यम प्रपश्यन्ति, भक्ता है यम प्रपश्यन्ति, भक्त उनको देखते हैं, देखते हैं, सब तरह से प्यार करते हैं। योगिनो यम प्रपश्यन्ति, कहां देखते हैं, योग विभावित हृदय, योग से परम शुद्ध किए हुए हृदय मन में देखते हैं। योग विभावित, योग है के द्वारा विभावित हृदय, विभावित क्या ऐसे अर्थ हो विशेष रूप से शोधित शुद्ध हृदय में, परंतु इसका एक और अर्थ है भक्ति योग का, जो विविध भावना करते हैं भगवान के प्रति, कोई सखा मानता है उनको, कोई स्वामी मानता है, कोई अपना प्रियतम मानता है, कोई पुत्र मानता है और अनेक प्रकार से प्यार करते हैं जो भक्त लोग भगवान से, तो वे हृदय में स्फुरित होने वाले भगवान को देखते रहते हैं। हृदय योग विभावित, योग से शोभित अंतःकरण में भक्त लोग भगवान को प्रपश्यन्ति, देखते रहते हैं। लेकिन मैं तो भक्ति योग नहीं किया हूं, इसलिए मैं केवल प्रणाम कर रहा हूं, मुझमें प्रभु को देखने की योग्यता नहीं है, भाव का उन्मेष हो रहा है। इसके पहले गजेंद्र जी यह कह चुके कि मैं प्रभु मेरी रक्षा के लिए आविर्भव तु, मेरे पास प्रकट हो, मुझे दर्शन दे, लेकिन इस श्लोक में कहते नहीं, नहीं भगवान तो केवल भक्तों के लिए, योगियों के लिए सुलभ है, हम तो योग कर नहीं रहे। हाथी के शरीर में क्या भक्ति कर सकते थे, मनुष्य शरीर वास्तव में भगवान की भक्ति के योग्य है। हाथियों को कोई इकट्ठा करके कहे कि भागवत सप्ताह हो रहा है, अब चलिए यहां सुनिए, तो आकर के यहां पेड़ों और सब तोड़ करके आदमी को ही भगा देंगे, वो सुनने वाले नहीं। लेकिन मनुष्य सुन सकता है, सुनना भगवान के विषय में यही सबसे बेस्ट काम है मनुष्य जीवन का, सबसे श्रेष्ठ काम है। मेरे इस काल में भी अगर देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ काम है भागवत पढ़ना सुनना, इसके समान कोई दूसरा काम नहीं है, लेकिन इससे सब छोटा है, यही सबसे श्रेष्ठ। और वैसे भी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पंच महासाधनों में श्रीमद् भागवत के अर्थ का आस्वादन कहा, स्वतंत्र साधन, बहुत सुंदर। कैसे योगियों का, भक्तों का अंतःकरण शुद्ध होता है, भक्ति योग करने से, भगवान के नाम का बारंबार कीर्तन करने से, उच्चारण करने से और उनके गुणानुवाद सुनने से, बोलने से, उनको प्रणाम करने से, उनकी पूजा करने से, उनकी सेवा करने से, उनकी आज्ञा का पालन करने से और अपने पास जो कुछ भी है वह भगवान के चरणों में अर्पित करने से योगी भक्त शुद्ध हो जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ योगी वही है जो भगवान में मन लगा करके और उनका भजन करते हैं नौ प्रकार से। योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजतोयो नाम सम्य युक्त तमो मत। वही सबसे श्रेष्ठ योगी है जो मुझमें अपने मन को लगा करके और मेरा भजन करता है। तो गजेंद्र जी यही कह रहे हैं कि मैं तो भगवान को केवल प्रणाम कर सकता हूं, मैं उनको जानता नहीं हूं। जो भी हो, यह भी एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, कि भगवान की जानकारी हो या न हो, पर प्रणाम तो किया जा सकता है ना। कहने के लिए व्यक्ति कोई अपने को नास्तिक कहता है, लेकिन नास्तिक कोई नहीं है। नास्तिक भी कभी कभी कह देता है सब ऊपर वाला देख रहा है, तो ऊपर वाला तुम्हारा बाप देख रहा है, ऊपर वाला वही देख रहा है ना जो गजेंद्र की रक्षा करने आया गरुड़ पर चढ़कर। वैसे भगवान कहते भी हैं कि हम सबके पिता हैं, हम बीज प्रदो पिता है, खुल करके बोलते हैं भगवान सबके पिता है। अब तो पता नहीं पत्र लिखते हैं कि नहीं, लोग पहले लिखते थे मैं आपके कुशल के लिए परम पिता परमेश्वर से मनाया करता हूं। लेकिन पूछा जाए कि कौन पिताजी है, किसे मनाया करते हैं, तो वो निराकार है। देखिए ये बुद्धि है, ये साकार जी बैठे हैं और इनका बाप जो है वो निराकार है, ऐसी बुद्धि। गजेंद्र जी ऐसे ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि जो भी लोग जिनको हृदय में देखते रहते हैं ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, मैं इनके शरण में हूं। इतः अस्मि, नतः अस्मि, नत हूं, झुका हूं, उनके शरण में हूं, ये प्रभु मेरे पर कृपा करें। जब ऐसी बात है कि भगवान भक्ति से ही दर्शन देते हैं, मिलते हैं, तभी सर्वे युगों में वह क्यों ना स्थित है। सिद्धर स्वामी जी प्रश्न उठाते हैं, जब योग करने से ही भगवान मिलेंगे, और योग करना बहुत आसान है, नौ प्रकार का योग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, बहुत आसान योग। जैसे इस समय आप सुन रहे हैं, ये श्रवण सबसे पहला योग है, श्रवण, और दूसरा है सुने हुई बातों का कीर्तनम, कीर्तन नाम गुण लीला आदि का कीर्तन, और श्रवण कीर्तन जो व्यक्ति करेगा तो स्मरण अपने आप ही होगा, स्मरण, और इस तरह से और सब मिलाकर के नौ भक्ति, इसी को योग कहते हैं। अब के युग में योग का इतना रूप बिगड़ गया है, और योग को ही लोग योग कहने चालू किए हैं, और दुनिया में सब जगह छा गया है, जोगा जोगा जोगा, योग करते हो, योग करते हो, एक माला जप नहीं करता है और जोगी हो गया। देखिए एक बार भगवान को प्रणाम नहीं करता है और जोगी हो गया। एक मायापुर में आया था जोगी, वो तथा कथित जोगी, कुर्ता वर्ता निकाल कर अपने पैर के मूवमेंट को ऐसा दिखा रहा था, तो तालियां बज रही थी चारों तरफ, ताली बज रही थी, वाह वाह कितना फर्स्ट क्लास का, अपने हाथों को अगर घुमा दे चमड़े के भीतर ही तो बहुत भारी जोगी हो गया। और कई तरह से बिच्छू जैसा है, मयूर जैसा है, सांप जैसा अपने शरीर को चला ले, तो इसको कहते हैं जोगी। आज के युग जनता का आध्यात्मिक स्तर या अंडरस्टैंडिंग इतना लो हो गया है, वो कुछ भी मान सकता है। योग शब्द यहां आया हुआ है, गजेंद्र जी कह रहे हैं, योग रंधित कर्मणो हृदय योग विभावित है, योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तन्नतोस्मि। और भगवान स्वयं योगेश है, योगेश का मतलब है योग के फलदाता, जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं उनको फल देने वाले योगेश हैं, योग के ईश्वर श्री विष्णु हैं, उनको फल देंगे ही, कभी निराश नहीं होना चाहिए, भगवान फल देंगे। नाम जप करने का, प्रणाम करने का, कथा सुनने का, ये फल देंगे ही, दे ही रहे। कथा श्रवण का फल तो कथा श्रवण ही है, लेकिन और भी अपना धाम वगैरह, अपना पार्षद बनाना, ऐसे भगवान देंगे, क्योंकि इस भक्ति योग के वही स्वामी हैं, वही सब कुछ देख रहे करते हैं, कितने का क्या फल होगा, ये फल होगा, वो फल होगा। तो ऐसे योगेश को, भक्ति योग के स्वामी को, भक्ति योग के द्वारा आराध्य प्रभु का, कि मैं शरण ले रहा हूं, मैं उनके उनको प्रणाम करना, नत है उसमें। तो ये प्रश्न हुआ कि जब भक्ति योग से ही भगवान मिलते हैं तो सभी योग ही क्यों नहीं करते हैं, क्यों फालतू काम धंधे में लगे रहते हैं। तब इस पर गजेंद्र जी कहते हैं कि आपकी माया शक्ति इतनी प्रबल है कि लोग इसमें भूल जाते हैं और भक्ति नहीं करते। भगवान को प्रणाम करते हैं, इस माया से छूटने का प्रयास कर रहे हैं। नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेग शक्ति त्रयाखिल दे गुणाय, मैं नमस्कार करता हूं ये प्रभु। दो श्लोकों में बता रहे हैं कि भगवान का शक्ति त्रय, भगवान की तीन शक्तियां ऐसी हैं जिनका वेग असह्य है। तीन महान भगवान की शक्तियां क्या है, माया शक्ति को कहा जाता है शक्ति त्रय, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। और इनके द्वारा ये रचा हुआ सारा विश्व और इनसे प्रभावित सारे जीव की चेतना, ये है शक्ति त्रय। और शक्ति त्रय रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, इनके अलग अलग वेग हैं। जैसे रजोगुण का वेग है राग, राग किसी चीज में अटैचमेंट पैदा करती है माया, देह में और देह से संबंधित पदार्थों में और व्यक्तियों में ममता हो जाती है, इसको राग कहते हैं। वास्तव में जीव अकेला आया है, अकेला चला जाएगा, परंतु देख रहे हैं कि बीच में कितनी ममता है, यह मेरा है, यह मेरा है, मेरा है, ये है वो। ये भगवान की शक्ति का कार्य है, माया शक्ति का प्रभाव राग। और तमह, तमह का प्रभाव है क्रोध लोभ आदि, बहुत ये तमोगुण का प्रभाव माना जाता है। और सत्वगुण का क्या प्रभाव है, मैं धनी हूं, मैं सुखी हूं, मेरा ये सब है, मैं ठीक हूं। इस प्राकृतिक जगत में ये जो सुख की भावना उत्पन्न होती है कि मैं ठीक हूं, यह सत्वगुण का कार्य है। तीन अद्भुत शक्तियां, तीनों शक्तियां बांध के रखी है। तो इन शक्तियों का असह्य वेग है रागादि लक्षण, खास करके काम और लोभ है, ये बहुत बड़ा वेग है। इसकी चपेट में सारे जीव फंसे हुए हैं और बाहर भी भगवान इंद्रियों के विषय में है। अखिल धी गुणाया, अखिल धी समस्त धी मन इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रियों के सारे विषय के रूप में भी भगवान हैं बाहर। क्यों जीव फंस जाता है, बाहर भी जो शब्द रूप रस गंध आदि हैं, ये भी भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न है, अतः ये बहुत आकर्षक है। तो जीव की जो चेतना है इन विषयों में लग जाती है और इस तरह से उसकी इंद्रियां दूषित हो जाती हैं विषयों को भोगने से। कदिंद्रियाणा मनवात वर्तमने, जिसकी दूषित इंद्रियां हैं कुत्सितानी इंद्रियाणी जैसा तई, कदिंद्रियाणा मनवात वर्तमने, जिनकी दूषित इंद्रियां हैं भोगों में लगी हुई हैं, वे तो भगवान के मार्ग पर चल ही नहीं सकते, भक्ति योग पर चलेंगे नहीं। वर्तमकार थे रास्ता पथ, भगवान की माया का ऐसा प्रभाव है कि संसार के भोगों को भोगने में ही व्यक्ति रचा पचा है। प्रकृति के गुणों के कारण राग द्वेष मद मत्सर्य इत्यादि इसी में पड़ा रहता है, कहां से भक्ति कर पाएगा। एक प्रकार से गजेंद्र जी निवेदन कर रहे हैं भगवान से, आप कृपा करके अपनी माया शक्ति का प्रभाव रोक दीजिए, ये भगवान की शक्ति इस तरह से भुलावा में रखी है। जिसका भजन करना चाहिए, जिसको पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, उसके विषय में जीव कुछ नहीं सोच रहा, कुछ भी नहीं। और जो नाशवान चीजें हैं, नाशवान ही नहीं दुखद वस्तुएं हैं, उन्हीं के संग्रह भोग में पहुंचा करता है, उन्हीं को अपना समझता है। यह है भगवान की शक्ति का महान वेग, महान प्रभाव। प्रपन्न पाल आया और हे प्रभु आप अपनी शरणागत का पालन करते हैं, जो आपके प्रपन्न है शरण है उनका पालन करते हैं, अर्थात उनको आप माया के इस वेग से बचा लेते हैं। प्रपन्न पाल का यहां अर्थ है जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान माया के इन दुष्प्रभावों से बचा लेते हैं। ये संसार में रहते हैं परंतु फिर भी उन विषयों जैसा वे बिल्कुल भूले नहीं रहते हैं और भगवान को छोड़ करके विषय प्राप्ति के लिए जत्न कर रहे हैं। रामचरितमानस में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान को छोड़ करके और संसारिक भोगों में मन लगाता है उसके लिए प्रयास करता है जुटाने का भोगने का, तो वह ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जिसको अमृत दिया गया किसी बर्तन में पीने के लिए और अमृत को फेंक करके और विष लेकर के पीता है, जहर पी रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि उसे वो अच्छा लग रहा है, अनुभव होता है कि विष है जहर है सब कुछ, लेकिन फिर भी माया का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि विषयों नहीं लगा रहा। दुरंत शक्ति भगवान की दुरंत शक्तियां, दुरंत शक्ति जिस शक्ति का अंत नहीं, एक तरफ है भगवान की माया शक्ति है और दूसरी तरफ भगवान की अंतरंगा शक्ति है। व्यक्ति यदि भगवान को प्रणाम करे भगवान का आश्रय ले तो अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति को तुरंत नष्ट कर देती है। जैसे आप देखते हैं इस संसार में अंधकार है रात्रि में रहता है और सूर्य है, सूर्य भी भगवान की शक्ति है और अंधकार भी भगवान की शक्ति है, लेकिन सूर्य के उगते ही भगवान की अंधकार शक्ति विलीन हो जाए समाप्त। इसी प्रकार से जो व्यक्ति विष्णु की शरण लेता है भजन करता है तो संसारिक आवेग संसारिक काम क्रोध लोभ आदि उसके नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करूं। नायम वेद सुम आत्मा नक्षत्याहम धियाहतम तम दुरप्ते महात्म्यम भगवंतमितोस्मि हम जक्षत्या अहम धिया। भगवान की माया शक्ति से संसार के सारे लोग मैं या अपने उपलक्षण में सबको कह रहा हूं यह जन आवृत है, इसकी आत्मा ढकी हुई है स्वरूप ढका हुआ अयम जन आवृत। किस लिए ढकी हुई है? भगवान की माया शक्ति कैसे काम करती? अहम धिया मैं यह देह हूं, यह अहम बुद्धि और देह से संबंधित कोई भी वस्तु मेरी है जो मम बुद्धि अहम मम ये जो भाव है इसको अहंकार कहते हैं। अहंकार दो तरह से काम करता है, मैं ये हूं और मेरा ये है, मैं मालिक हूं मैं भोक्ता हूं। तो इस तरह से अहंकार से इस जीव का जो आत्मान स्वरूप है वो ढका हुआ है। उसी तरह से हे प्रभु मैं अहंकार में हूं, मैं सोचता हूं मैं एक हाथी हूं जीव हूं और ये बच्चे हमारे हैं हस्तियां हमारी हैं और खान पान करना घूमना फिरना यही जीवन का मैं लक्ष्य बना लिया। इस तरह से अहंकार से वास्तव में संसार के भोगों के प्रति जो भावना हो रही है देह में आत्म बुद्धि यही इसका मूल है। देह देह को मैं मानने से अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। जीव का स्वरूप परम सुखमय है, भगवत दास का स्वरूप है, लेकिन जब मैं भावना उसमें हो ही नहीं रही है भगवान की माया से जो छक्त्या अहम दिया अहम बुद्धि हो रही है देह में और देह को ही सुख देने वाले पदार्थों में या लोगों में मम बुद्धि हो रही है और इतना जीव व्यस्त है कि उसको कोई सपने में फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने आप पर ध्यान दे कि मैं कौन, अपने को देह मान ही चुका है। अगर किसी को कहा जाए सबसे पहले एक बात है, हम जब प्रचार में गांव में जाते थे तो एक बार हमने कह दिया कि देहात में बुद्धि नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति क्या कहा महाराज जी, कहते हैं कि देहात में नहीं रहना चाहिए, सब लोग शहर में रह जाएं। देहात बुद्धि नहीं करना चाहिए, देह में आत्मा, देहात देहात मतलब शहर से बाहर गांव आदि को देहात कर। ये क्या हर एक बात में देहात देहात रटा करते हैं। देह और आत्मा, देहात्मा, देह अलग है आत्मा अलग, हम लोग आत्मा है देह नहीं है, लेकिन देह की ही आवश्यकता सुख के लिए मर रहे हैं। तो कम से कम शास्त्रों के अर्थ को भी ठीक से समझना चाहिए कि ये क्या हुआ, अर्थ समझना जरूरी है। नहीं तो ऐसा मैं सुना है, एक भक्त कह रहे थे कि एक जगह एक पंडित जी संस्कृत का श्लोक बोल रहे थे, तो बोले कि क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। उसका अर्थ है कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य ईश्वर भी नहीं जानता, ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, मनुष्य कहां से जानेगा। लेकिन वो कह रहे थे, वो क्या अर्थ कर रहे थे, क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्य, स्त्री के चरित्र को सुनकर पुरुष भाग गया। पुरुष भाग गया, अब सब लोग खोजने लगे, दैवो न जानाती, और ईश्वर भी नहीं जानता कि कहां भाग गया, मनुष्य कहां से जानेंगे कहां भाग गया। ऐसे ऐसे अर्थ कर देवता ब्रह्मा जी को पता ही नहीं है, तो कौन मनुष्य पता लगाएगा कहां भाग करके गया। ये कोई अर्थ है? इसी तरह से कई शब्दों के अर्थ लोग नहीं समझ पाते, साधारण शाब्दिक अर्थ नहीं समझते हैं, इसीलिए बहुत गड़बड़ होती है, इसी चीज का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझना। अगर कहीं कहा जाए ऐसी सत्य बात है कि हम कहे कि हम देह नहीं है, कोई भक्त प्रचार कर रहा था हम देह नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति कहा क्या पागल जैसा बात, हम देह नहीं है क्या है। हम देह नहीं है तो और क्या है, देह नहीं है, देह सामने है, कहते हैं कि देह नहीं है। तो इस प्रकार गजेंद्र जी भगवान का वर्णन कर रहे हैं, जिनकी माया शक्ति से अहंकार से जीव का स्वरूप ढका हुआ है, और जिनकी कृपा से ही, जिनकी भक्ति से ही जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, ऐसे प्रभु को इतः अस्मि मैं शरण में हूं, शरणागत हूं। इस प्रकार जब गजेंद्र भगवान का वर्णन किए, एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमान भिदाभिमाना, नैते जदोपशिपुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिलाभिलाषी। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में गजेंद्र जी के युद्ध ग्रह के साथ युद्ध का उसको देख रहे थे, और यह भी देख रहे थे कि गजेंद्र बहुत दुखी हैं। गजेंद्र बहुत दुख में है, लेकिन गजेंद्र भगवान का वर्णन अप्राकृत रूप में कर रहे थे, कोई विशेष मूर्ति का संकेत उन्होंने नहीं किया, किसी विशेष रूप का संकेत नहीं किया, वर्णन नहीं किया। तो ब्रह्मा जी हंस वाहन है, भगवान शिव त्रिशूलधारी है, इंद्र वज्रधारी, ये लोग सोच रहे थे कि यदि ये हमको पुकारेंगे तो कहेंगे कि हे हंस वाहन आप आइए, या हे शूल पाणे आप आइए, रहे वज्रपाणे आप आइए, लेकिन ये लोग गुणों का कोई वर्णन नहीं आ रहा था, निर्विशेष वर्णन हो रहा था, किसी विशेष से रूप का उल्लेख नहीं किए। इसलिए ये लोग तो समझ रहे हैं कि ये परब्रह्म को, भगवान को पुकार रहे हैं, इसलिए वे लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? विविध लिंग भेदा अभिमाना, विविध है जो लिंग भेद है, चिन्ह भेद है, उसमें ही जिनकी अभिमति थी। और जो वज्र धारण करता है तो सोचता था हम वज्रधारी हैं, वज्र धारण करने वाले, तो हमको पुकारेंगे। तो कई प्रकार के अलग अलग वेश है, भूषा है, चिन्ह है, उसी में जिनकी अभिमति है, इस कारण से लोग गजेंद्र को जब नहीं आए बचाने के लिए, जदा न एते उपसत्रिपु, जब गजेंद्र जी की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि देवता नहीं आए, तब भगवान वहां प्रकट हुए। क्योंकि भगवान सर्वदेवमय है, निखिला पुकत्वात् और सर्वामरमय सर्वदेव मूर्ति भगवान है। वह प्रार्थना वास्तव में भगवान की हो रही थी, इसलिए भगवान जो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, वे प्रभु वहां प्रकट हुए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। तत्रा खिलामरमय अखिल अमरमय सर्वदेव मूर्ति श्री भगवान तत्र तदा उसमें प्रकट हुए, आदि आसित प्रकट हुए। और वैसे भी देखा जाए तो संसार में विपत्ति में साथ देने वाले केवल भगवान हैं, केवल भगवान जीत जाते हैं। भोजपुरी में विपद में साथी एक देवकी के लाल दिनवा पात्र भई। सुदामा जी की पत्नी रो रो करके कह रही है, जब उस भोजन भी नहीं घर में बनता था, कुछ भी नहीं था, बच्चे रो रहे थे, तो सुदामा की पत्नी कह रही है कि हे प्रियतम, आप द्वारका जाइए, आप केवल जाएंगे, आप मांगेंगे नहीं भी, कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन सर्वज्ञ प्रभु हम लोगों के दुख को देख करके अवश्य कुछ धाम देंगे, आप केवल चले जाइए। गीत भोजपुरी में है, उसका प्रथम लाइन है कि रोई रोई कहे दी सुदामा के बहुरिया दिनवा पात्र भई। रो रो के कर एक दिन पतला हो गया, मतलब दुख का दिन आ गया। तो कहते कहते कहती है कि इस विपत्ति में कोई साथ नहीं देगा, केवल देवकी का पुत्र साथ देगा। माता देवकी का पुत्र श्री भगवान कृष्ण साथ देंगे। तो इस तरह से गजेंद्र इस बात को समझ रहे थे, कोई दूसरा सहारा नहीं दे सकता है, वास्तव में भगवान सबसे बड़े हैं, सर्वशक्तिमान है, और वही सहारा देंगे। तो भगवान हरि हैं, अपने भक्तों का दुख हर लेते हैं और सर्वदेवमय हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष के मूल में जल देता है, पानी देता है, तो संपूर्ण वृक्ष को का सेचन कर रहा है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त है, भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो सभी देवताओं की सेवा कर रहा है। भगवान की भक्ति से ही भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न रहते हैं, गणपति जी प्रसन्न रहते हैं। यदि सभी देवताओं को प्रसन्न करना हो तो यही उपाय है कि भगवान कृष्ण की सेवा की जाए। यदि दूसरे देवताओं की कोई सेवा करता है तो वो सिद्ध है ही नहीं, वो सेवा ले भी नहीं सकते। जैसे शरीर के सारे अंग हैं, काम सब करते हैं, लेकिन भोजन पेट को दिया जाता है। अगर भोजन का कुछ अंश हाथ को दिया जाए, पैर को दिया जाए, कान में, नाक में, आंख में दिया जाता है, तो खाएंगे भी नहीं, बल्कि और खराब हो जाएंगे। आंख ने मान लीजिए कोई एक आदमी रसगुल्ला डाले तो क्या आंख खाएगी उसको? वैसे ही देवता लोग भुक्ता नहीं है, ये सेवक है, भगवान सर्वेश्वरेश्वर है विष्णु, उनकी जब भक्ति की जाती है तो देवताओं को बहुत सुख मिलता है, पर मूर्खता बस लोग भगवान को छोड़ करके और दूसरे की पूजा करते हैं। पूजा करें हरे कृष्ण। तो यह प्रवचन गंगा जी के तट पर श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी योगी नाम परमम गुरु कहे जाते हैं, समस्त योगियों में भक्तों में श्रेष्ठ हैं सुखदेव गोस्वामी, और वे भगवान के विषय में बताते हैं अखिल अमरमय सर्वदेवमय भगवान है। देवता लोग नहीं आ रहे थे गजेंद्र की रक्षा के लिए, उसमें यह भी भाव है कि देवता जानते थे भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी शिव जी जानते थे कि भगवान इनकी रक्षा के लिए आएंगे, तो वे लोग नहीं रक्षा करने आए, अच्छा हुआ। तो रक्षा कर दिए होते तो भगवान नहीं आए होते, तो भगवान के अभिप्राय को समझ करके ही वे लोग रक्षा नहीं किए। तम तद्वदा तम उपलब्ध जगन निवास स्त्रोत्र निशम्य दिविजय सहसंस्तुवद्धि छंदो मयेन गरुणेन समूह्यमान चक्रायुधो व्यगो गमदास जतो गजेन्द्र। भगवान ने समझ गए, देख लिए कि गजेन्द्र तद्वद आर्तव अद्भुत तरह से दुखी है, मेरा भक्त गजेन्द्र बहुत दुखी है, आर्तम तद्वत आर्तम, ठीक ठीक भगवान समझ लिए कि बहुत दुखी है। कैसे समझ लिए? क्योंकि जगन निवास है, भगवान समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं सर्वत्र, वे स्वर्ग में हैं, वैकुंठ में हैं, सभी देश में हैं और सभी जीवों के अंतःकरण में हैं। अतः उन्होंने देख लिया तम तद्वदार्थ उपलब्ध जगन निवास, भगवान जगन निवास जगत के घट घट में वास करने वाले भगवान अपने भक्त के दुख को जान गए। और स्तोत्रम मिशन में स्तोत्र सुने, नमो भगवते तस्मै जत ये तत्सुदात्मकम पुरुषायाद बीजाय परेशायाद बीज, स्तोत्र सुने। भगवान है कीर्तन के बहुत प्रेमी है, अपने स्तोत्र को स्वयं सुने शुरू से अंत ध्यान से, स्तोत्रम निशम्य, तभी चले गजेंद्र के पास। गजेंद्र जी को बचाने के लिए भगवान बहुत तेज गति से चले। जब भगवान आए जले आकाश में तो सारे देवता समझ गए कि भगवान आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि गरुड़ जी से अद्भुत प्रकाश निकलता है और अद्भुत अपने ढंग की आवाज, गरुड़ जी के पंख से साम वेद के श्लोक निकलते हैं, गीत गाते हुए चलते हैं पंख से ही अपने आप, सब तरह के बाजे फीट हैं गरुड़ जी के पंख में, भगवान की स्तुति हो रही। एक तो आवाज और तेज, बताइए सूर्य उगे तो कौन नहीं जानेगा कि सूर्य उगा हुआ है, सूर्य से तो कोटि कोटि गुना प्रकाश भगवान में है, तेज है। जब वो चले गजेंद्र को बचाने के लिए तो सारे देवता उनके साथ हो लिए, इस जगत के ईश्वर स्वामी जा रहे हैं तो सब भगवान के पीछे पीछे सब साथ में चले। तो गरुड़ जी तो बहुत तेज चल रहे थे, इतने तेज देवता लोग नहीं चल पा रहे थे, लेकिन फिर भी पूरी ताकत के साथ भगवान के साथ वो हो रहे थे और भगवान की भी स्तुति करते जा रहे थे। सहसम स्तुत में देवगण भगवान की स्तुति जयकार कीर्तन करते हुए चल रहे थे। भगवान ने गरुड़ासन होकर के गरुड़ जी तक चढ़ करके आए, छंदोमय गरुणे में समूह्यमान, गरुड़ जी छंदमय है, छंद का अर्थ होता है वेदमय, और वैसे यहां पर अर्थ है इच्छामय, छंद को इच्छा कर जैसे स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा, छंदोमय। मन के वेग से चलते हैं, बहुत तेज चलते हैं। श्रीधर स्वामी जी लिखे हुए हैं कि छंदोमयन शब्द जो है सैभ्याय उक्त, शीघ्रता के लिए ये शब्द सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। बहुत तेज गति से गरुड़ जी पर चढ़कर भगवान चले, सम उह्यमान, भगवान ढोए जा रहे थे, उह्यमान का ढोए जा रहे थे, किसके द्वारा? गरुणेन, गरुड़ जी के द्वारा। और देवताओं ने देखा कि भगवान आ रहे हैं और उनके हाथ अंगुली में सुदर्शन चक्र बहुत तेज गति से नाच रहा है। चक्रायुध, चक्र को लिए थे और चक्र बहुत तेज गति से घूम रहा था। सुदर्शन चक्र में सूर्य से बहुत ज्यादा तेज है, सूर्य में जो तेज है वो कुछ भी नहीं है सुदर्शन चक्र के आगे। तो ऐसे तेजों में सुदर्शन चक्र को लेकर के भगवान इसको घुमाते हुए और अभ्यगमत, अभिगमन की बहुत तेज गति से, आंसू जल्दी, अभिगमत यही अर्थ काफी है, अभिगमन के बहुत तेज गति से जा रहे थे, आ रहे थे। आंसू वो भी अति शीघ्र, आंसू जतो गजेंद्र, जिस दिशा में गजेंद्र थे, जहां थे उस तरह भगवान बहुत देर से आ रहे थे। भगवान अपने भक्त के दुख को समझ गए थे तो इसलिए वे आ रहे थे। जतो गजेंद्र, जहां गजेंद्र थे वहां पर भगवान बहुत तेज गति से आ रहे थे और देवता सब बीच में आकर भगवान को प्रणाम कर रहे थे, जस गा रहे थे, लेकिन किसी से भी भगवान ने बात नहीं किया, किसी से, शिव जी से भी नहीं पूछा कि कैसे हैं आप, ये कुछ नहीं। लगता था कि भगवान अपने भक्त की रक्षा में इतने एकाग्र और व्यग्र थे, उन्हें फुर्सत नहीं थी कि अन्य देवताओं से समाचार पूछे। और वे लोग लज्जित भी थे, जब भगवान आ गए रक्षा के लिए और इतना व्यग्र गति से जा रहे थे तो उन्हें ध्यान में आया कि हम लोगों को बचा देना चाहिए था, देखिए भगवान को आना पड़ गया, तो थोड़ा शर्मिंदा हो रहे थे और भगवान बात भी नहीं कर रहे थे। जब तक काम नहीं हो जाएगा, अपने भक्त की रक्षा नहीं हो जाएगी, तब तक भगवान को बात करने की फुर्सत नहीं थी। बहुत व्यग्र गति से भगवान आ रहे, तेज गति से। संतः सरस उर्बले न गृही तैयार, तो महाबलवान ग्रह के द्वारा पकड़े जाने के कारण गजेंद्र बहुत आर्त थे। तीन श्लोकों में लगातार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आर्तम, आर्त, पीड़ित, तीनों में यही बात कह रहे हैं। गजेंद्र बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे, क्योंकि उरुबले ने गृही कर, महाबलवान ग्रह के द्वारा वो पकड़े गए थे। 1000 वर्ष युद्ध करते करते पस्त हो गए थे, अब केवल बस मरना ही बाकी था। यदि भगवान नहीं आए होते इतना जल्दी तो अब वो मरने वाले थे, कहने का आशय ये है। तो भगवान देखा बहुत आर्त, तो बलवान ग्राह के द्वारा पैर पकड़ा गया है, बहुत दुख में थे, फिर भी जब गजेंद्र ने देखा कि हमारे प्रभु, हमारे स्वामी आ रहे हैं, इस जगत के ईश्वर, तो वे तुरंत ही अपने सूंड से कमल उखाड़े और कमल से युक्त अपने सूंड को ऐसे उठाए भगवान को अर्पण करने के लिए। क्या भाव है, क्योंकि इन्होंने इंद्रदुम्न शरीर से भगवान का पूजन किया था, खूब भगवान को फूल चढ़ाया था, भगवान को नैवेद्य चढ़ाया था, श्रृंगार किया था, तो वही स्वभाव अभी भी विद्यमान है। इस दुख में भी गजेंद्र भगवान को फूल देने के लिए सूर्य को ऊंचा किए, सांबुज करम, सौ अंबुज कर, अंबुज के साथ अपने सूर्य को उच्छिप्य ऊंचा उठा करके, और भगवान का नाम बोलने की आदत थी ही, कि देखिए भगवान को अर्पण कर रहे, कमल अर्पण कर रहे और सूर्य ऊंचा करके और मुख से बोले, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। उस दुख में बोलना कठिन था, इसलिए कृच्छा बहुत कष्ट से बोल पाए, बहुत कष्ट से बोले, नारायण, अखिल गुरु, भगवान,
ते नमः, आपको नमस्कार। ये तीन नाम दिए, हे नारायण, हे सबके स्वामी सर्वेश्वर, सबके गुरु, और हे सर्वेश्वर जो पूर्ण, आपको मैं नमस्कार करता हूं। निखिल भक्त का स्वभाव इस विपत्ति में, जबकि ग्राह पैर पकड़ा है और 1000 वर्ष तक युद्ध हो चुका है, मरने की हालत है, डूबने वाले गजेंद्र है, फिर भी चेतना क्या है कि भगवान को फूल अर्पित करना है। यह है वास्तव में भक्ति, भगवान को देने की जिसकी आदत है, भगवान को पुष्प फल आदि देने की जिसको आदत है, यह बहुत सुंदर बात है। मरते समय भी भक्त के मन में यह इच्छा रहती है कि भगवान को मैं अर्पित करूं, भगवान की इस तरह से सेवा करूं, ये करूं। बताइए, जो आदमी सुख से रह रहा है, जिसके घर में पैसा भी है, स्वस्थ है, फिर भी एक फूल लेकर के भगवान को अर्पण करने की भावना नहीं है ना? देखा जा रहा है संसार में, ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि फूल हम भगवान को ले जाकर के रोज अर्पित करें। कोई कोई भाग्यशाली भगवान को माला अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, और भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, इस एटीट्यूड से प्रसन्न होते हैं, दुआ करूं, ये करूं। बताइए, जो आदमी सुख से रह रहा है, जिसके घर में पैसा भी है, स्वस्थ है, फिर भी एक फूल लेकर के भगवान को अर्पण करने की भावना नहीं है ना? देखा जा रहा है संसार में, ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि फूल हम भगवान को ले जाकर के रोज अर्पित करें। कोई कोई भाग्यशाली भगवान को माला अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, और भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, इस एटीट्यूड से प्रसन्न होते हैं भगवान, इस भावना से, न कि उनको फूलों की कमी है, उनको खाने की कमी है, लेकिन भगवान को खिलाना, भगवान को फूल अर्पित करना, उनका श्रृंगार करना, उनके देह पर चंदन चढ़ाना, चंदन यात्रा, यही है भक्ति। भगवान के प्रति सहज स्नेह, सहज भाव। तो उस महाविपत्ति की दशा में भी गजेंद्र भगवान के लिए फूल उखाड़े, जिन्हू उन्होंने देखा कि वे आ रहे हैं, तो फूल लेकर के उनको अर्पित करने के लिए और प्रणाम करें। नमः ते नमः, आपको प्रणाम है। तो तीन काम यहां कर रहे हैं, एक तो भगवान का नाम ले रहे हैं इस विपत्ति की दशा में। सबका ऐसा समय आता है, बुढ़ापा आती है, बुढ़ापे के बाद मृत्यु का समय आता है, उस समय भक्त की दशा हो जाती है कि भगवान का नाम नहीं ले सकता। जो पहले बहुत बहुत नाम जप किया है, कीर्तन किया है, उछला है, कुदला है, कूदा है, लेकिन संत सरसे उरु बलेन गृहित अर्थ, एक तो देश ऐसा था अंत सरसे, झील के अंदर, सरोवर के अंदर युद्ध हो रहा था, और वहां सरोवर के भीतर बलवान ग्राह पकड़ करके खींच रहा था, तो डुबाना चाहता था। बाहर से ऐसा लग रहा था कि ग्राह खा जाना चाहता है इनको पकड़ करके, लेकिन वास्तविक ये बात नहीं थी। ग्राह पूरा चेतना में था। आगे कथा आएगी कि देवल ऋषि ने जब उसको साप दिया था गुहू नामक गंधर्व को कि तुम ग्राह हो जाओ, बाद में जब वो क्षमा मांगा तो ऋषि ने दया करके कहा कि गजेंद्र को जब तुम पकड़ोगे तो गजेंद्र भक्त है और उसकी रक्षा के लिए भगवान आएंगे, तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो पूरा चेतना में था, वो जानता था, ऋषि ने कहा था कि भगवान आएंगे उसको बचाने के लिए, इसीलिए वो छोड़ ही नहीं रहा था, दैव प्रेरित था, वास्तव में ईश्वर की शक्ति थी ग्राह में, इसीलिए गजेंद्र छूट नहीं पा रहे थे, भगवान ने लीला करना चाहते थे, और अब ऐसा लग रहा था कि अब मर जाएंगे, अब नाक कान सब डूब गया, डूबने की हालत में था। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने देखा गजेंद्र को बहुत दुखी। गजेंद्र कैसे थे? सह अंतः सरसी सरोवर के भीतर बीच में उरुबलेन गृहीत, महान बलवता ग्राहेण गृहीत पकड़े गए थे। दृष्टवा गरुत्मती हरिम ख उपात सके, उन्होंने देखा कहां खे, खे मैंने आकाश से, आकाश में गरुत्मती गरु जी पर चढ़े हुए। दृष्टवा गरुत्मती हरिम, गरुण जी पर भगवान को देखा गजेंद्र ने, तो देखते ही अपने सूंड से कमल का चयन किए। कुछ भक्तों का मत है कि वे दो चार कमल उखाड़े और सूंड से और भगवान को अर्पण करने के लिए, या एक उखाड़े, जो भी हो, सांबुज कर्म कहा गया है। कमलों के साथ जिनका कर है, सूंड है, ऐसे सूंड को ऊपर करके और बहुत कष्ट से गिरमा है यह वचन बोले, बस इतना ही बोले, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। अब इससे अधिक बोली नहीं निकल सके, बहुत कठिनाई से बहुत जोर लगाकर के बोल पाए किसी तरह से यही सब, हे भगवान आपको नमस्कार है, हे नारायण, हे अखिल गुरु और हे भगवान, बस यही। तौंबिक्ष पीड़ित मजह सहसा वतीर्य, जब भगवान ने देखा बहुत दूर से आकाश से ही, गरुण जी बहुत तेज गति से चल रहे थे, लेकिन तम पीड़ित मजह सहसा वतीर्य, भगवान ने जब देखा कि मेरा भक्त बहुत पीड़ित है, चारों तरफ से बहुत दुखित है, तो भगवान के मन में भावना हुई कि गरुण मंद गति, ये गरुण भी बहुत मंद गति से चल रहा है, इसलिए सहसा बिना गरुण जी से कुछ कहे अकस्मात भगवान कूद पड़े गरुण जी से, बहुत ऊंचे आकाश से कूद गए सरोवर में, सहसा और तिर्ज, और उतर करके आकर के और गजेंद्र को पकड़ लिए और ऊपर उठा लिए। गजेंद्र को पकड़ करके ऊपर उठाए तो ग्राह भी पैर पकड़े पकड़े ऊपर आ गए, जल से बाहर कर ली। पहला काम भगवान ने किया ग्राह के बल को कम कर दिया, पानी से बाहर काढ़ लेना उसके बल को कम करना है, ग्राह पानी में ही बलवान रहता है, तो उठा लिया। यह भगवान के लिए गए, क्या कोई ऐसा कर सकता है कि विमान में आ रहा हो विमान से बाहर कूद करके और किसी को बचाए, वो अपनी ही लीला खत्म कर देगा, है ना? कहां टिकेगा, और भी सरोवर में प्रशांत महासागर में गिरे और किसी को बचाए। भगवान की भगवत्ता सब जगह, गरुण जी को छोड़ करके और बहुत वेग से आए और गजेंद्र को पकड़ लिए, पकड़ करके ले करके पहले ऊपर आए तो ग्रह भी पैर पकड़े पकड़े आ गया, फिर भगवान ले गए उसको स्थल पर, तट पर ले गए समुद्र के सरोवर के, और वहां ले जाकर के अपने चक्र से अरिणा विपाटित मुखा भगवान ने उसके मुख को फाड़ा, पैर पकड़ा था इसलिए बहुत बारीकी से भगवान ने उसके मुंह को काटा फाड़ दिया और मुक्त हो गए। तो श्री भगवान ने अपने भक्त के चरण को जहां दांत लगा था, खून चू रहा था, उसको अपने कर सरोवर से, कर कमल से सहलाने लगे, ऐसा वर्णन। और भगवान के हाथ से छूते ही, कर कमल के स्पर्श होते ही गजेंद्र चतुर्भुज हो गए। मरा हुआ हाथी का शरीर नहीं पड़ा रहा, छूते ही गजेंद्र हो गए। ये कथा अभी बाद में आ रही है। तो इस प्रकार ग्राहाद विपाटित मुखाद अरिणा गजेंद्रम संपश्यताम हरि अमुंचत उत्श्रियाणाम, देवता सब देख रहे थे, भगवान इतने व्यस्त थे अपने भक्त की रक्षा में कि किसी की तरफ देखने की भी उनको फुर्सत नहीं थी। जैसे कोई व्यक्ति अपने काम में एकाग्रचित हो, कर रहा हो, उसको उस काम में आनंद आता हो और बहुत बड़ा काम हो, उसको पसीना आएगा, सब आएगा, लेकिन फिर भी वो दत्चित होकर के अपना काम करता है। तो जो प्रभु जगत के ईश्वर हैं और उनके बड़े बड़े भक्त देवता हैं, ब्रह्मा जी आदि हैं, लेकिन उनसे कोई बात नहीं करना, पहले अपना काम कर रहे हैं, भजन को लेकर बाहर आए, ग्रह का मुख काटे और अपने भक्त को छुड़ाए। पश्यतम उच्छ्रियाणाम, संपश्यतम उच्छ्रियाणाम, भगवान जब काम कर रहे थे तो किसी से पूछे नहीं कि कुछ उपाय बताइए या दौड़िए, आप भी कुछ लाइए काटने के लिए इसका पैर, या कोई फर्स्ट एड मलहम लाइए या दवा लाइए, कुछ भी नहीं कहे। देवता लोग अनुभव कर लिए कि भगवान नाराज है, भगवान प्रसन्न नहीं है इस समय हम लोगों से, मानो भगवान गजेंद्र की रक्षा करते हुए सब भाव व्यक्त कर रहे हैं, तुम लोग तमाशा देख रहे थे, मेरा भक्त मर रहा था, तुम लोग इस तरह तमाशा देख रहे थे, तो भगवान का बात नहीं करना इतना ही काफी था। जो प्रभु हमेशा पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि कैसे हैं, कैसे सृष्टि चल रही है, और आपके सारे प्रजापति पुत्र ठीक से हैं ना, और कोई विश्व में संकट तो नहीं आया है ना, क्योंकि भगवान कभी कभी मिलते हैं, वो वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा जी इस प्राकृत जगत में रहते हैं, भेंट होने पर सबसे पहले तो भगवान ब्रह्मा जी से ही पूछते हैं ठीक से चल रहा है, लेकिन यहां तो बात ही नहीं की है, सीधा वैकुंठ से आया और अपने भक्त को बचाया, लगे हुए थे। तो संपश्यता उच्छ्रियाणाम, देवताओं में उच्छ्री है, बहुत तेज रहता है, बहुत चमकीले देवता लगते हैं, बड़े ठैक बड़े से सजे धजे थे, कपड़ा पहने थे, बड़े अच्छे से थे, लेकिन वो लोग देख रहे थे भगवान की इस लीला को, उनके देखते देखते भगवान ने अपने भक्त गजेंद्र को बचाया ग्रह से, देखते देखते देख रहे थे, इच्छा हो रहे थे कि हम भी कुछ हेल्प करें, हम भी भगवान, लेकिन भगवान बात ही नहीं कर रहे, बस बस जो कर रहे हो करो तुम लोग, हमें रक्षा करने, इस तरह से भगवान लगे हुए रक्षा करने में, देवताओं के देखते देखते एक प्रकार से अवहेलना करते हैं भगवान ने, देवताओं ने कुछ नहीं की और गजेंद्र की रक्षा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तदा देवर्ष गंधर्वा ब्रह्मे शान पुरोगमा मुमुचु कुसुमासारम ससंत कर्म तद्धरे। ब्रह्मा और ईशान शिव जी पुरोगमा जिनमें पहले चलते थे, अर्थात इंद्र, ब्रह्मा और शिव प्रधान देवता लोग, देवता गण, ऋषि गण, गंधर्व गण, ये भगवान के कर्म की प्रशंसा करते हुए, इस गजेंद्र उद्धार की प्रशंसा करते हुए भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने, कीर्तन चालू हुआ, कीर्तन करने लगे, गान करने लगे, भगवान की इस लीला बारंबार गाते थे। हरे तत्कर्म संसंत, भगवान के इस कर्म, इस लीला की प्रशंसा करते हुए भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। पुष्प की वर्षा कौन लोग कर रहे हैं? देवता, ऋषि और गंधर्व, जिनमें ब्रह्मा जी और शिव जी प्रधान है, अर्थात शिव जी और ब्रह्मा जी के पीछे चलने वाले सभी ये देवता, ऋषि, गंधर्व पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और भगवान के कर्म की प्रशंसा करने लगे। ने दुर्दुंदुभयो दिव्या, स्वर्ग की दुंदुभियां बजने लगी भगवान के इस लीला पर, दुंदुभियां चारों ओर बजने लगी। दुंदुभियों से तात्पर्य है कि सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। गंधर्व न मृत्यु जगु, गंधर्व गण गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। ये अपने आप ही समझ लेना चाहिए, अगर ये कहा जा रहा है कि गंधर्व नाचने लगे और गाने लगे तो इसका अर्थ है कि अप्सराएं साथ में नाचने लगी और गंधर्व गाने लगे। ऋषय चारण सिद्ध, ऋषि लोक के देवता, चारण लोक के देवता, सिद्ध लोक के देवता, ये सब भगवान की स्तुति करने लगे। तुष्टु, बहुत प्रकार के स्तोत्र पढ़ने लगे, गुण गाने लगे भगवान के। पुरुषोत्तम, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ भगवान का जस गाने लगे। अब कथा सुनिए ग्राह की, पर गजेंद्र की कथा बाद में सुनेंगे। सूरदास जी ने पद में लिखा है कि ग्राह प्रथम गति पाए, अभी भगवान की कृपा देखिए, गजेंद्र का उद्धार तो बाद में हुआ, पहले ग्राह अपनी गति पा गया। वो गंधर्व था और भगवान की कृपा से ग्राह योनि से छूट करके अपना लोक प्राप्त कर लिया। भगवान की देखिए कृपा, भगवान किसी के शत्रु नहीं है, वे ग्राह के या गजेंद्र के सबके एक समान हित ऐसी है, यही भगवान का स्वभाव है। तो ग्राह के बारे में बता रहे सुखदेव गोस्वामी, यो सब ग्राह यह असौ ग्राह। महाराज परीक्षित कहते ये जो ग्राह है ये क्या है, सवई सद्य परमाश्चर्य रूप धिक मुक्तो देवल सापेन हुहुर गंधर्व सप्तम। यह जो ग्राह है, यह ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था, गंधर्वों में श्रेष्ठ, सबसे सुंदर गंधर्व, गंधर्व सप्तम, बहुत श्रेष्ठ गंधर्व। गंधर्व एक देवता है, देवताओं की उपजाति। तो हुहु नाम का गंधर्व था, देवल के साप से मुक्त हो गया। श्रीधर स्वामी जी ने लिखा है कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह से मुक्त किया और ग्राह को देवल के साप से मुक्त किया, दोनों को मुक्त किया, गजेंद्र को ग्राह से और ग्राह को देवल ऋषि के साप से। देवल ऋषि का नाम गीता में आता है, असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि। कितने महान हैं देवल ऋषि, महान वैष्णव, कृष्ण तत्ववेता। इनका एक अपराध कर दिया था गंधर्व, हुहु नाम का गंधर्व एक बार स्त्रियों के साथ स्नान कर रहा था एक सरोवर में, स्त्रियों में तो अप्सराओं के साथ स्नान कर रहा था। तो सरोवर में स्नान कर रहा था तो ये देवल ऋषि गए स्नान करने के लिए, स्नान कर रहे थे तो वो ऋषि के साथ मजाक किया, उनका चरण पकड़ करके पानी में खींचा। ऐसे साधु से लोग इस तरह का दुर्व्यवहार करते, डूबने लगे ऋषि, पैर खींचा और तैरना हो सकता है, न ही जानते होंगे, या जानते भी होंगे तो खींच रहा है एक गंधर्व बलवान देवता खींच रहा है। तो इस पर इनको क्रोध आ गया ऋषि को, उन्होंने साप दिया, तू ग्राह बनकर के मेरा पैर खींच रहा है, तुम ग्राह हो जाओ। बस कहना था कि ग्राह हो, इतना सुंदर तेजस्वी ये गंधर्व और ऋषि के कहने से मुंह से शब्द निकला, उधर बस ग्राह बन करके पानी। तब उसका होश ठिकाने आया, फिर इनके चरण में गिर करके क्षमा मांगने लगा कि हे दया निधि, आप क्षमा कीजिए, मैं अज्ञ जीव हूं, मैं नहीं जानता था आपके इस प्रभाव को, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो परम वैष्णव है, इनको तुरंत दया आ गई। दया आ गई तो देवल ऋषि ने कहा, देखो कुछ काल के बाद एक गजेंद्र आएगा सरोवर में, तो कुछ वैष्णव कहते हैं कि उसी सरोवर में वह स्नान कर रहा था और वहीं पर देवल ऋषि आए थे। तो जो भी हो, तो गजेंद्र आएगा, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, पानी पीने आएगा तो तुम उसका पैर पकड़ लेना, निश्चित उसको बचाने के लिए श्री भगवान आएंगे तो तुमको भी मुक्त कर देंगे साप से, तुमको भी अपना स्वरूप दे देंगे भगवान। तो ये कृपा थी वास्तव में। ये अजीब बात है, यहां इस प्रसंग में आप देखेंगे जो कथा सुन रहा है महाराज परीक्षित, उनको भी साप था ब्राह्मण का, ग्राह को भी साप था और गजेंद्र को भी साप, तीनों साप से ग्रस्त, तीनों सापित हैं, और सात दिन के बाद मरेंगे। ये साप था ब्राह्मण का और ये तो ग्रह हो ही गया है और ये भी हाथी हो ही गया। संजोग देख तो ग्रह है शब्द परमाश्चर्य रूप धीप, जब ही भगवान ने उसको गजराज से अलग किया, उसका मुख फाड़ा, तो वह शरीर छोड़ करके परम आश्चर्य रूप धृत पहले की अपेक्षा बहुत अधिक सुंदर हो गया। परम आश्चर्य रूप, परम आश्चर्य साधारण शब्द नहीं, परम मतलब सुप्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहे वंडरफुल। सुखदेव गोस्वामी परम आश्चर्य रूप अद्भुत सुंदर, अद्भुत सुंदर भगवान की कृपा के कारण है रूप धारण किया, जो देवल मुनि के और देवल मुनि के साप से मुक्त हो गया। देवल सापे ने मुक्त, साप से मुक्त भगवान को प्रणाम किया ग्रह गंधर्व, भगवान को प्रणाम किया प्रणम्य शिरसा, साष्टांग प्रणाम किया भगवान को, कृष्ण को, विष्णु को, और अधिशम, क्योंकि भगवान अधीश्वर हैं, समस्त विश्व के मालिक है, स्वामी हैं अधीश्वर, तो उनके यश को गाने लगा। भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ दिव्य यश है भगवान का, कीर्ति है, और जो अविनाशी हैं, जिनका सौंदर्य कभी फीका नहीं होता, जिनका जस फीका नहीं होता, और जिनकी करुणा कभी नहीं जाती है, यह अव्यय का अर्थ अविनाशी, यही भगवान का ऐसा अविनाशी स्वरूप करुणा में, ये अपने भक्त ग्राह गजेंद्र के पुकारने से आए, गजेंद्र की रक्षा की, लेकिन उसके साथ साथ ग्राह की रक्षा बिना परिश्रम के, बिना प्रार्थना के की। ग्राह ने कुछ नहीं किया था भगवान का भजन, बल्कि ये दो दो साधु का केवल चरण पकड़ा है, देवल जी का चरण पकड़ा और गजेंद्र जी का चरण पकड़ा। एक भक्त वृंदावन एक स्वामी जी अखंडानंद सरस्वती कह रहे, किसी भी तरह से हो भक्त का चरण पकड़ लो और छोड़ो मत। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी में डुबा दे। ये चरण पकड़ने का अर्थ है कि शरणागति करे, छोड़े ना। तो भगवान भक्त का उद्धार करते हैं तो उसके साथ भक्त के अनुगामी का अपने आप उद्धार हो ही जाता है। तो वह हुहु नाम का गंधर्व भगवान की स्तुति किया, जस गाया, अगायत जसोधाम, भगवान जस के आश्रय हैं, आकर हैं, ऐसे परम जसस्वी परम कीर्ति में भगवान के विषय में गाने लगा। श्रेष्ठ गंधर्व है ही, और भी भगवत प्रसाद से सभी मिला हुआ था, तो गाने लगा अगायत, सारे देवता सुनने लगे, मुग्ध हो गए भगवान के जस को सुनकर, क्योंकि भगवान कीर्तन में गुण सत्कथा, भगवान के गुण ही कीर्तनीय हैं। कीर्तन करने जो बखान करने जो हैं तो भगवान के गुण, और भगवान की सती कथा दिव्य शाश्वत नित्य कथाएं हैं आनंद देने वाले। तो भगवान की कथाओं को गा रहा था, भगवान के गुणों को गा रहा था, खूब गाया मन भरकर, सारे देवता सुन रहे थे। इतना अच्छा वो गंधर्व गाया कि सार अब गजेंद्र उद्धार है को तो लोग देख ही रहे थे, लेकिन भगवान के जस को सुनने में तन्मय हो गए सारे देवता। सोमकंपित ईशेनो परिक्रम में प्रणमितम लोकस्य पश्यतो लोकम स्वमगान मुक्त के सब। इस तरह भगवान ने उस पर कृपा किया, अनुकंपा किया, वह दिव्य शरीर प्राप्त किया गंधर्व शरीर, और इसके बाद परिक्रम्य प्रणमितम भगवान की परिक्रमा किया। कितना बार किया सुखदेव को स्वामी नहीं कह रहे, कम से कम कहते हैं तीन बार परिक्रमा किया, त्रि परिक्रम्य। यहां पर केवल इतना ही बोल रहे हैं परिक्रम्य, जाते समय परिक्रमा करने का विधान है। तो भगवान के पास से अपने घर जाते समय हुहु गंधर्व परिक्रमा कर रहे हैं और प्रणाम किया, परिक्रमा करके प्रणाम किया भगवान को, इसके बाद स्वधाम आ गया, अपने घर गए। तो प्रश्न होता है कि गंधर्व क्यों गया अपने घर, उस लोक में भगवान ने भेज दिया कि वहां जाकर के भगवान के इस लीला का प्रचार करेगा, कहेगा ना कि ऐसे भगवान आए, ऐसे उद्धार किए, तो गंधर्व लोक में भगवान की कथा होगी, तो गजेंद्र उद्धार का सप्ताह होगा, तो फर्स्ट क्लास का गायक वर्णन करने वाला गंधर्व जाकर के प्रचार करेगा। प्रचार का मतलब है भगवान की कीर्ति का प्रचार, यही प्रचार का मतलब, भगवान का जस गाना, कथा कहना, यही प्रचार है। तो गया इसीलिए अपने लोग, भगवान को प्रणाम करके परिक्रमा करके गया। लोकस्य पश्यतः, लोगों के देखते देखते गया, सब देख रहे थे, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र भगवान, ये सारे देवता वहां। लोक का मतलब कोई बंबई का नहीं लोक था, सारे देवता थे, ये लोग देख रहे थे, देख रहे थे, और भगवान का कीर्तन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भगवान को प्रणाम करते हुए जस गाते हुए चला गए। देवताओं में शक्ति होती है कि बिना विमान के भी ऐसे आकाश में जा सकते हैं, चला गया। तो ग्रह का इस तरह से उद्धार हुआ। अब गजेंद्र का सुनिए। गजेन्द्रो भगवत स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्च चतुर्भुजः। और गजेन्द्र भगवत स्पर्शात्, भगवान के कर कमल का स्पर्श होते ही अज्ञान और बंधन से मुक्त हो गया, या अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। भगवान छुए उनको, उठाए जब सरोवर से, भगवान के श्रीहस्त कमल की विशेषता, छूने से ही उनकी अविद्या, उनकी माया समाप्त हो गई, और तुरंत ही भगवत पार्षद के रूप में वह शरीर बदल गया, चतुर्भुज पीतवासा। ये दो विशेषण दिए गए, एक अलंकार के विषय में और एक आकार के विषय में। इसका मतलब यह है कि भगवान के जो भी अलंकार हैं, जो भी वेशभूषा है, वैसे हो गए। वैकुंठ में भगवान के पार्षद ठीक भगवान जैसे रहते हैं, भगवान जैसे ही सुखी रहते हैं, बहुत बड़े ऐश्वर्य में रहते हैं, इतना ही श्रृंगार अलंकार सब सुख भरा रहता है, कोई दुख नहीं होता। ऐसा नहीं, इस संसार का ऐसा नहीं है कि मालिक बहुत भारी बंगला में रहते हैं और सेवक झोपड़पट्टी में रहे, ऐसे वहां का हिसाब नहीं है। भगवान के धाम में रहने वाला भगवान का प्रत्येक सेवक यहां के शिव ब्रह्मा से भी बढ़कर के ठाक बैठ से रहता है, भगवान जैसे। तो भगवान का रूप मिला, सारूप्य मुक्ति मिले, प्राप्तो भगवते रूपम। भगवतो रूपम का मतलब है भगवान जैसा रूप, अर्थात पार्षद देह प्राप्त, पार्षद शरीर। कैसे? केवल छूने से, भगवान के छूने से। अरे भगवान की बहुत विशेषता है, भगवान से संबंधित यदि शब्द सुना जाए तभी व्यक्ति भगवान का ध्यान प्राप्त करता है, भगवान का रूप प्राप्त करता है, कथा सुन करके। और फिर डायरेक्ट स्पर्श भगवान किए हैं, इसमें तो कहना ही क्या। इस तरह से श्रीमद् भागवतम में भगवान की विलक्षणता और इनके अद्भुत स्वभाव का वर्णन किया गया है, अद्भुत स्वरूप का। इस संसार में हम लोग सुनते हैं कि स्पर्श मणि है, पारस मणि जिसको कहा जाता है, लोहे को उछू दे तो लोहा सोना बन जाता है, स्पर्श मणि के छुआने से लोहा सोना बन। एक जड़ स्पर्श मणि में ये जब प्रभाव हो सकता है तो समस्त शक्तियों के आश्रय चिन्मय सच्चिदानंद घन भगवान किसी को देख दे या कोई किसी को छू दे तो उसमें ये चीज हो जाए, भगवान का पार्षद देह प्राप्त कर ले, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। अद्भुत भगवान की कमाना। तो गजेंद्रो भगवत स्पर्श, सुखदेव गोस्वामी उस महान सभा में बड़े लोगों की सभा में बोल रहे हैं, गजेंद्र भगवान के स्पर्श मात्र से स्पर्श विमुक्त अज्ञान बंधना समस्त कर्म बंधन से मुक्त हो गए और भगवत रूपम प्राप्त, भगवान का रूप प्राप्त किए। रूप में वस्त्र का वर्णन करे पीत वासा, वासा माने वस्त्र, पीला वस्त्र पहने थे। अब इसके साथ अपने आप भूषा भी समझ लेना चाहिए, वेश हुआ भी भूषा, भूषा मतलब अलंकार, सिर पर मुकुट, गले में हार, बाजू में कंकड़, और कमर में करधनी, कानों में कुंडल, पैर में नूपुर, ये सब अलंकार। और सांवला सुंदर शरीर, भगवान जैसा सुंदर शरीर तो प्राप्त किए। चतुर्भुजा, चार भुजाएं, भगवान की चार भुजाएं हैं तो ठीक वैसे ही सुंदर चार भुजाएं धारण किए और भगवान के साथ चलेगा, उसके बाद में वर्णन आएगा। सुखदेव गोस्वामी यहां इस तरह से वर्णन करते हैं, तब फिर इनके पूर्व जन्म की बात कह रहे हैं। हुहू के पूर्व जन्म की बात कहे को देवल ऋषि का चरण पकड़ा था तो इसलिए उन्होंने साफ दिया, फिर कृपा करके कहा कि गजेंद्र का चरण पकड़ना, तो कथा हो गई। अब गजेंद्र जी के पूर्व जन्म की कथा कह रहे हैं। सवई पूर्वम अभूद राजा पांड्यो द्रविण सप्तम, सवई ये गजेंद्र पूर्वम, पूर्व जन्मनी, पूर्व जन्म में दक्षिण भारत में पांड्य देश के राजा थे द्रविण सप्तम, और द्रविणों में सबसे श्रेष्ठ थे। द्रविण एक क्षेत्र को कहते हैं, पांड्य भी कहते हैं उसी के अंदर, ये पांड्य देश के राजा थे। इनका नाम था इंद्रदुम्न। देखिए इनकी भक्ति का वर्णन कितना करें सुखदेव गोस्वामी। राजा थे इंद्रदुम्न नामक, विष्णु व्रत परायण, भगवान के व्रत के परायण, भगवान की पूजा में ही लगे रहते थे। राजा को ऐसे होना चाहिए, राजा थे लेकिन भगवान की भक्ति में ही लगे रहते थे। आजकल के ये सरकारी आदमी सोचते हैं भक्ति इनके लिए नहीं है, है ना? जितने बड़े बड़े पदों पर हैं, अगर इनको कहा जाए भक्ति करो भक्ति करो तो ये समझते हैं नहीं नहीं भक्ति हम लोगों के लिए नहीं है। इनके लिए क्या है? इनके लिए शराब पीना ठीक है, बस ये उनका स्वधर्म हो गया। बस घूमना फिरना बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इधर उधर सभा में बकवास करना, बस यही काम है। लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए उनको टाइम नहीं, कीर्तन करने का, भगवान को प्रणाम करने का। देखिए एक राजा की कथा सुनाई जा रही है, दक्षिण भारत वर्ष के राजा इंद्रदुम्न नाम था और विष्णु व्रत परायण, व्रत का अर्थ भक्ति, भगवान की भक्ति में परायण थे, भगवत भक्ति को बढ़ाने वाले नियमों के पालन में लगे हुए थे। जैसे भगवान को प्रणाम करना, पूजा करना, कथा सुनना, नाम उच्चारण करना, कीर्तन करना और साधुओं की सेवा करना, इसमें वो लगे हुए थे। बहुत सुंदर राजा थे, इनके राज्य में प्रजा सुखी थी। पर हुआ क्या, इतनी इनकी भक्ति बढ़ी कि अपने प्रतिनिधि को राज्य दे करके ये मलय पर्वत में चले गए, जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। इस प्रकार की कथाएं भागवत में और भी हैं, जैसे राजर्षि भरत जवानी में राज्य छोड़ दिए और चले गए वन में भगवान का भजन करने। भगवान के भजन की भक्ति की इतनी आवश्यकता है और इस बात को ये लोग समझ गए थे राजा लोग, तो राज्य छोड़ करके वन में चले गए। आज कोई राज्य छोड़कर वन में चला जाएगा? नहीं, बल्कि वन से भी भाग करके आकर के राज दखल करेगा। ये सन्यासियों के साधुओं की दशा, वनवासी होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए, लेकिन भारी भारी बंगला घर बना करके ठाट से रहे, अभी कहे थे भजन कर रहे हैं। ये राजा थे, राज्य का सुख छोड़ करके मलय पर्वत पर चले। मलय पर्वत उनसे निकट ही है और उसी मलय पर्वत पर श्री अगस्त जी रहते हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव आचार्य और भगवत कथा के महादानी हैं अगस्त जी। उनकी कथा सुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी भी गए थे। अजामिन प्रख्यान में बताते हैं, मैं ये कथा अजामिन प्रसंग अगस्त मुनि के मुख से सुना था और भगवान शिव उनसे कथा सुनने जाते हैं, नारद जी सुनने जाते हैं, इतने महान आचार्य हैं। पर ये गए वहां भक्ति में लग गए और राजकार्य में मन नहीं लगा सके। 24 घंटे भगवान की भक्ति में रहूंगा, सर्व त्याग करी करे कृष्ण का भजन। वास्तव में सब कुछ त्याग करके कृष्ण का भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन करने के लिए ही मानव शरीर है, और कुछ करने के लिए नहीं है, केवल भक्ति करने के लिए। तो ये अपने धर्म को समझ गए थे, वैराग्य हुआ छोड़ छाड़ करके और वन में चले गए। गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरि, वन में जाकर के क्या किए, कुलाचल आश्रम, कुलाचल में मलय पर्वत में आश्रम बना करके छोटी सी कुटिया खरपात की और उसमें भजन कर दिया। राजभवन त्याग करके पर्ण कुटी बना करके, वो भी शीत घाम से बचने के लिए क्या करने लगे, अच्युतम समर्पयामास, भगवान की पूजा करने लगे। तो भगवान की पूजा करने लगे मतलब वन से फल कंद जुटा करके ला करके भगवान को भोग लगाते थे, ध्यान करते थे, पत्र पुष्प आदि चढ़ाते थे, पूजा करने लगे। और जो कीर्तन जप आदि था तो करते नहीं थे। एक समय की बात है, वे राज छोड़ करके चले गए वहां खुलाचल में, वहां जाकर के मौन व्रत धारण किए। मौन व्रत मतलब किसी से कोई फालतू बात नहीं करना, केवल भगवान का नाम जप करना, भगवान का गुण बोलना, मंत्र जप करना, इसको मौन कहते हैं। मौन का अर्थ है भगवत शब्द के अतिरिक्त, भगवत भजन के अतिरिक्त और बात न बोलना न सुनना। कभी कभी कोई कोई साधु मौन लेते हैं, लेकिन वो सुनते रहते हैं दिन भर फालतू बात और स्वयं नहीं बोलते, ऐसे करते हैं, बोलते नहीं है, स्लेट पर कभी कभी लिखते हैं। ये सब मौन है। मौन का मतलब सुने भी नहीं और बोले भी नहीं फालतू बात, भगवान की बात सुने, भगवान की बात बोले, इसको मौन व्रत कहते हैं। मौन व्रत धारण किए थे और अच्युतम ईश्वरम हरिम समर्थयामासम, अच्युत की ईश्वर की हरि की आराधना कर रहे थे। तापस तपस्वी थे, तप कर रहे थे, भोगों में बिल्कुल नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वन में गए तो राज्य से 2-4 हजार सोने का मुहर ले जाए और वहीं से कहीं से खरीद खरीद के खाते रहे। तापस थे, इतने तपस्वी कि राजा थे, उनकी जटाएं हो गई थी, जटाधर इतने इस प्रकार से शरीर की उपेक्षा, श्रृंगार नहीं करना, तो केश में कंघी नहीं लगाएंगे, तेल नहीं लगाएंगे तो जटा हो ही जाएगी। तभी भी नहीं था कि वहां रोज एक नाई रख करके और सेविंग किया करें, वो भी नहीं, शरीर किस तरह उपेक्षा, जटाधरा, जटाएं बन गई थी सिर पर, तपस्वी थे, आत्मवान, अपने मन को वश में किए थे, मन पूरा पूरा भगवान में लगा था। या आत्मा माने भगवान और वान माने वाला, भगवत भगवान वाला, भगवान वाला हो गए तो भगवान हृदय में आ चुके थे उनके पूरा पूरा, तब तो राज छोड़कर के वन में गए। तो भगवान की आराधना कर रहे थे। एक दिन की बात थी, अगस्त मुनि को बात सुनकर बहुत सुख मिला कि हमारे देश के राजा वन में आकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो वे देख लिए थे कि राजा में एक दोष है, ये राजा होते हुए भी अब भजन में तो मन लगा चुके हैं, लेकिन साधु सेवा ब्राह्मण सेवा बिल्कुल इस पर महत्व नहीं दे। कोई राजा है पहले से इतना धन है और व्यक्ति कहीं आकर के और बस जप करे समाधि में रहे इसे ठीक नहीं है। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं तुम्हारे लिए भीख मांगना ठीक नहीं है, तुम लड़ो। लड़ना ठीक है, मार काट करना ठीक है, लेकिन समाधि लगाना और भजन करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। भगवान ने समझाया और अंत में अर्जुन युद्ध किए। ये भी एक राजा थे, ठीक है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन साधुओं का सत्कार ब्राह्मणों का सत्कार तो होना ही चाहिए। वृंदावन में कितने भी विरक्त होते हैं कोई वैष्णव साधु और मधुकरी करते हैं, परंतु उनके यहां अगर कोई वैष्णव चला जाए तो वे भी कहीं न कहीं से वैष्णव का सत्कार करते हैं, करना ही चाहिए। अपने लिए जो मधुकरी लाए हैं वो भले खिला दे, भले भूखे रह जाए, लेकिन करना है सत्कार। ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो 3 लाख जॉब करता हूं और करता हूं, उनको फुर्सत नहीं है, कोई आवे जाए हमको उससे मतलब नहीं, तो ये अपराध लगता है। एक इसके पीछे अहंकार बनता है जो व्यक्ति को सफल नहीं होने देता है। सर्वज्ञ अगस्त मुनि इस बात को समझ गए, राजा भजन तो वास्तव में कर रहे हैं, उनको वैराग्य है और भगवान में मन लगा है, लेकिन इसके साथ साथ वैष्णवों की सेवा भी करना इनके कर्तव्य है। तो एक बार अपने कुछ शिष्यों को लिए गए और इंद्रदुम्न महाराज के आश्रम पर गए कुटिया, केवल इनके कल्याण के लिए गए। देख रहे थे, टेस्ट कर रहे थे कि ये साधुओं का स्वागत करता है कि बस भजनानंदी ही हो गया। यदृच्छया तत्र महाजसा मुनि समागम शिष्य गणय परिषि, अकस्मात बिना निमंत्रण के बिना कुछ कहे भगवान अगस्त जी वहां गए। शिष्य गणय परिषि था अपने शिष्यों के साथ, बहुत से शिष्य साथ में थे भक्ति करने वाले, तो उन शिष्यों के साथ वे पहुंचे। शिष्य सोच रहे थे कि राजा के यहां चल रहे हैं तो जरूर खाने पीने को मिलेगा। शिष्यों के साथ चले, अगस्त जी को मालूम था कि राजा कुछ स्वागत नहीं करेगा, इसमें कुछ लाया भी नहीं है और दिन रात हरे कृष्ण जप रहा है, अभी कहें तो कुछ नहीं जाए, वो समझ रहे थे। तो गए जदृच्छया, जदृच्छया का अर्थ भगवत इच्छा से या अकस्मात, तत्र उस स्थान पर महाजसा महाजसस्वी महान वैष्णव अगस्त जी वहां गए। तमवीक्ष तुष्णिम अकृतारहणादिकम रहस्य उपासन विशिष्ट चुको तो वे देखे इंद्रदुम्न महाराज भजन में बैठे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे और जप कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। इतनी बड़े तेजस्वी मुनि आए हैं अपने स्थान पर और शिष्यों के साथ, उनको देख करके ये खड़े भी नहीं हुए, बल्कि रहस्य उपासीन एकांत में जैसे बैठते थे ऐसे बैठे रहे। वो लोग आए आश्रम पर, न उठकर प्रणाम किए, न स्वागत पूछे, सत्कार करने का तो कोई सवाल ही नहीं। राजा इस तरह से ब्राह्मणों का अपमान किए करे साधु का, ठीक है मान लीजिए उस समय उनके पास धन नहीं था या किचन साफ में नहीं था, वो नहीं स्वागत करते, खड़ा होकर के प्रणाम तो करना चाहिए था नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तम वीक्ष्य वीक्ष्य, हुआ अच्छा से देख लिए कि ये जगत प्रसिद्ध है अगस्त मुनि है, भगवान के परम भक्त है, लेकिन तम वीक्ष्य अपनी उनको देख करके भी तुष्णिम चुपचाप रहा, चुपचाप रह, बल्कि और एकाग्रता दिखाने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, और ऐसे जानबूझ करके पखंड नहीं कर रहे थे, वास्तव में मन भगवान में लगा था, लेकिन उपेक्षा तो जानबूझ करके की, जब देखे तो चुप रह गए और अकृत अरहणादिकम अरहण आदि पूजा आदि करना कुछ नहीं थी, अकृत अरहण आदि पूजा आदि नहीं थी, देखो खड़ा भी नहीं है। अगर किसी को देख करके उत्थान कोई व्यक्ति करे खड़ा हो गया तो वो भी पूजा है। हम लोग देखते थे जब पढ़ते थे कॉलेज में या स्कूल में, तो जब हमारे टीचर आते थे शिक्षक आते थे तो देखकर सब लड़के खड़े हो जाते थे, तो शिक्षक की यही पूजा है भाई देखकर खड़े हो गए, और वो जब सीट पर बैठ जाए तब बैठ। लेकिन ये तो रहस्य उपासीनम, जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे, उपासीनम खूब मजे में बैठे रह गए। शायद उनके मन में भी आया कि ऐसे तो ये सब आते ही जाते रहेंगे, भजन में डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए नहीं उठे। सोचे हम एक भाई उठेंगे स्वागत करेंगे तो जब छूट जाएगा चाहे ध्यान टूट जाएगा भगवान का, ये बैठे रहे उपासीनम ऋषि चुको पर। इसको देह करके अगस्त मुनि ऊपर से क्रोधित हुए, भीतर से क्रोधित नहीं, बहुत उनके हृदय में दया उत्पन्न हो गई राजा के भजन को देखकर, और वे सोचे कि अगर इस तरह से मनुष्य शरीर में रहेगा तो भगवान को प्राप्त करने में इसे कई जन्म लग सकता है, इसका शरीर बदलना चाहिए, जल्दी कृष्ण को प्राप्त कर सके। इसके लिए उन्होंने साप दिया, यदि ऊपर से साप लग रहा था लेकिन वास्तव में वो वरदान था। तो इस तरह से अच्छा इस बात कोई कहे कि आप कैसे जानते हैं कि वरदान दिए, सुखदेव गोस्वामी कथाकार हैं, वे सभा के बीच में बोल रहे हैं कि यह कह करके भगवान अगस्त चले गए, भगवान कह रहे हैं उनको, भगवान अगस्त मतलब जिनको क्रोध कभी हरा नहीं सकता, वो क्रोध के वशभूत हो ही नहीं सकते, उनको भगवान कहा गया, तो दया करके उन्होंने ये साप दिया। तस्मा इमं साप मदादसाधु, उन्होंने साप में क्या कहा, तस्मा इमं सापम अदात, ये साप दिए, अयम असाधु, ये बिल्कुल असाधु है, साधु नहीं है, अच्छा नहीं है, ये भद्र व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल उत्पटांग इसका आचरण। देख अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि अयम असाधु, ये असाधु है, दुनिया में तो विख्यात हो गया कि साधु हो गया, लेकिन यह असाधु है, साधु नहीं है, ये सज्जन का ये वैष्णव का व्यवहार नहीं है। अकृत बुद्धि, इसकी बुद्धि शिक्षिता नहीं है, इसकी बुद्धि को ट्रेनिंग नहीं दिया गया कैसे व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़ों के प्रति वैष्णवों के प्रति, इसको ये सीखा नहीं सीखा। देखो अद्य इस समय सीखा नहीं है, अद्य का अर्थ है आज अथवा इस समय सीखा नहीं, विप्राव ममता, ये ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है, राजा क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय का धर्म है कि ब्राह्मणों का वैष्णवों का इज्जत करे, वो नहीं करेगा तो दुनिया में कौन करेंगे इज्जत, धर्म है इसका कि ब्राह्मणों के वैष्णवों का इज्जत करे सम्मान करे, लेकिन विप्राव ममता उल्टे ब्राह्मणों का अपमान करने वाला हो गया। हम लोगों को देख करके भी यह आलसी हाथी की तरह बैठा रह गया स्तब्धमति, अस्तब्धमति मतलब एक तक देखता रहा या चुपचाप रहा, जैसे हाथी बैठा रहता ऐसे बैठा रहा। अतः यह अंधम तमम विषताम, यह उस अज्ञान योनि में चला गया, ये हाथी जैसा बैठा रहा, इसलिए स एव भवति इति शेषः, ये हाथी जैसा बैठा रह गया आलसी, इसलिए हाथी ही हो जाए ऐसा। तो पहले के ऋषियों का इतना प्रभाव था कि बस मुख से जबान निकलना हो जाना तुरंत। तो राजर्षि इंद्रद्युम्न जो वहां पर राजा के रूप में बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, अगस्त जी के कहते ही तुरंत हाथी हो गए, विशाल हाथी, ये अद्भुत अद्भुत सांप की बात आती है भागवत में, तुरंत हाथी हो गए। एवं सत्वागत गस्त्यो, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं सत्वा, इस तरह साप दे करके भगवान अगस्त्य गत, भगवान अगस्त चले गए, सर्वज्ञ अगस्त चले गए। देख लिए थे कि अगर ये राजा के शरीर में रहेगा तो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा और वैष्णवों का ब्राह्मणों का अपमान करने से अधोगति में जाएगा, इसलिए उनको शीघ्र राजर्षि इंद्रदुम्न को शीघ्र भगवान मिल जाए इसके लिए उन्होंने संग्रांतर किया, हाथी का शरीर दे दिया और चले गए। बाहर से शिष्य आदि समझ रहे थे कि गुरु जी बहुत टेंशन में आ गए, क्रोध में आ गए, लेकिन क्रोध में नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वे राजर्षि इंद्रदुम्न के स्वागत के भूखे थे, प्रणाम के भूखे थे, लेकिन इनके जीवन में वैष्णवों का इस तरह से अपमान एक बहुत बड़ा बैरियर का काम करता है, भगवान की तरफ बढ़ने की अपेक्षा नीचे दूसरे जन्म ले जाता, इसलिए उन्होंने हाथी शरीर दिया। और सानुगह गत, अपने शिष्यों के साथ वो चले गए, अपने अनुगामियों के साथ चले गए। इंद्रदुम्न क्या सोचे साप सुन करके, इंद्रदुम्न अपि राजर्षि दिष्टं तदुपधारयन्। महाराज राजर्षि इंद्रदुम्न महाराज परम वैष्णव थे, उन्होंने अगस्त मुनि जैसे महान मुनि के इस साप को सुन करके उसको दिष्टम उपधारण, यही माना कि ईश्वर के द्वारा ये होना निश्चित था, कोई घबराया नहीं, उन्होंने मान लिया, वास्तव में सच्ची भक्ति किए थे, मान लिया कि अगस्त मुनि के मुख से जो निकला है वास्तव में भगवान की इच्छा थी, यह हमारा कर्म है, हमारा ही कर्म था इनके मुख से आया है, इन पर कोई दोष नहीं है, इसलिए वे बदले में उनको साप आदि देने का नहीं सोचे, यही तो वैष्णव का बिहेवियर सह लेना। इतने बड़े आचार्य जब साप दे रहे हैं तो इसको सह लिया, मान लिया कि हमारे जीवन में होने वाला था, हमारा ऐसा कर्म है। जब किसी भक्त पर विपत्ति पड़ती है, दुख आता है, तो भक्त भगवान को दोष नहीं देता है कि मैं इनका भजन कर रहा हूं फिर भी हम पर इतना दुख क्यों आ रहा है, कभी ये नहीं सोचता, वो यही सोचता है कि हमारा ऐसा कर्म है, ऐसा प्रारब्ध है, पूर्व कर्म है, उसके कारण हमको एक दुख हुआ है, यह मान करके वो सह लेता है। तत्तेन कंपन समीक्ष मार, बल्कि विपत्ति में ही वो भगवान की कृपा देखता है, वो जानता है भगवान हमको इसलिए संकट दिए हैं कि हमारा मन भगवान में लगा रहे, भगवान को पुकारे, क्योंकि कष्ट आने पर दुख आने पर जिस तन्मयता से भक्त भगवान को पुकारता है उतने संपत्ति के समय नहीं पुकारता, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं, तो भक्त यही भावना करते हैं। राजा इंद्रदुम्न ने ये समझ गए कि इसी में हमारा हित है, हाथी के शरीर, हाथी का शरीर प्राप्त होगा, इसी में हमारी भलाई है, जो भी हो भगवान ने अच्छा किया, इसको उपधारण करते हैं, आलोचे दिष्टम उपधारण, इसको अपना कर्म फल समझे, भगवान की कृपा समझे। तेतुम तत्तेनु कंपम सुसमीक्ष मारो, यही अनुकंपा है भगवान की, मान ली, उसको धारण की खुशी से और हाथी का शरीर प्राप्त हो गया। आपन्न कौंजरिम योनिम, कुंजर कहते हाथी को, कौंजरिम योनिम तो हाथी की का योनि, हाथी का शरीर प्राप्त किए हुए आत्मस्मृति विनाशनी, हाथी का शरीर जिसमें अपना उनको बिल्कुल स्मरण नहीं रहा कि मैं इंद्रदुम्न राजा था, ये था, वैसे तो मनुष्य का शरीर भी आत्मस्मृति विनाशनी नहीं है, शरीर जो भी है अविद्या जाल है, शरीर अविद्या जाल, लेकिन उसमें भी हाथी का शरीर उसमें ज्यादा अविद्या है, इतना बड़ा हाथी, इतना शक्ति वाला, और एक अल्प शक्ति वाला मनुष्य उसको अपना नौकर बना करके रखता है ना। हम लोग देखे हैं पहलवान ऊपर हाथी पर चढ़ा रहता है, बाजार में घूमता है, और हाथी सूंड फैला फैला कर पैसा मांगता है और पैसा ले लेकर के मालिक को देता जाता है। उसको कोई बुद्धि नहीं कि इतना पैसा जो मिल रहा है तो हमको इसे खाना चाहिए, कुछ नहीं। वो ऊपर वाला बुद्धिमान है, वो इतने बड़े हाथी को चला रहा है। चल तो आत्मस्मृति विनाशन, आत्मा की स्मृति को नष्ट करने वाला हाथी का जो नहीं। उसमें आत्मस्मृति से तात्पर्य आत्मा की स्मृति हुई, भगवान की स्मृति, लेकिन ये भी अर्थ है कि मैं इंद्रदुम्न नाम का राजा था, इस स्मृति को विनाश करने वाला। जैसे कि कोई भी शरीर है, आज जिस शरीर में है कल दूसरा शरीर मिलेगा तो इस शरीर का स्मरण समाप्त हो जाएगा। मुख्य अर्थ है कि भगवान और आत्मा जीव के स्मृति को नष्ट करने वाला शरीर। उपाय तो प्रश्न होता है कि जब आत्मा की स्मृति को, भगवान की स्मृति को ये विनाश करने वाला है हाथी का शरीर, तो फिर स्मरण कैसे आ गया? हाथी के शरीर में इनको भगवान का स्मरण कैसे आ गया? कैसे भगवान को पुकारे संकट में पड़ने? तब कहते हैं हरि अर्चना निभावे न जद गजत्वे अपि अनुस्मृति। महाराज इंद्रदुम्न ने भगवान का भजन किया था, अर्चना किया था, पूजा किया था खूब अच्छा तरह से। राजा होकर के भी राज छोड़ करके जो वन में जाकर के भगवान का भजन किए थे, तो कितना बड़ा भक्त था। तो भगवान की अर्चना किए थे, पूजन किए थे, इसलिए उसके प्रभाव से अनुभावे न गजत्वे अपि अनुस्मृति। हाथी के शरीर में भी, गज के शरीर में भी भगवान कृष्ण का स्मरण आ गया। इससे सिद्ध होता है कि शरीर कोई भी हो, भगवान का स्मरण आने के लिए सब समय भगवान की भक्ति जरूरी है, खासकर पूजन अर्चन। भगवान की अर्चना किया था इसलिए उस अर्चना के प्रभाव से भगवान का स्मरण हो गया। अर्चन एक भक्ति है, नवधा भक्ति में से भगवान के श्री विग्रह की आराधना ही अर्चन कहा जाता है। जिन भक्तों को ये सौभाग्य मिलता है भगवान के चरण कमल छूने का, श्रृंगार करने का, भोग लगाने का, तो यह बहुत बड़ी बात है। ये स्वभाव बन जाता है तो वह जन्म जन्मांतर तक उत्साह जाएगा। यदि कदाचित भक्त किसी तरह से विषय में अविष्ट हो गया या मृत्यु हो गई, भगवान को नहीं पा पाया, लेकिन जो उसने पूजा किया है वो पूजन का प्रभाव उसको भगवान से जोड़ता ही रहेगा, निश्चित है। तो हरि अर्चन अनुभाव है ना, भगवान के पूजन के प्रभाव से महाराज इंद्रदुम्न को हाथी शरीर में भी भगवान का स्मरण आ गया। अब इस कथा का उपसंहार करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं विमोक्ष गजजुत्थपमब्जनाभ तेना पिपार्षद गतिं गमिते न जुक्तः गंधर्व सिद्ध विबुधय उपगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुणासनोदान। इस प्रकार गजजुत्थपम विमोक्ष अब्जनाभ ने गजराज को इस तरह मुक्त किया। पद्मनाभ भगवान, कोई न कोई कारण है। सुखदेव गोस्वामी जब कथा कहते हैं, भगवान की कोई विशेषता बताते हैं तो कुछ न कुछ कारण है। तो अब्जनाभ पर कमलनाभ भगवान गजजुत्थप को इस तरह से ग्राह से मुक्त किए, विमोक्ष अविद्या से सबसे मुक्त किए, और तेना अपि पार्षद गति गमित तेना, और गजराज जी पार्षद गति प्राप्त किए। पार्षद गति प्राप्त गजराज के साथ उनको, अब उस समय हाथी के शरीर में तो थे नहीं, पार्षद गति गमित तेना, पार्षद गति जो प्राप्त किए थे ऐसे गजेंद्र के साथ श्री भगवान युक्त होकर गरुण जी पर एक साथ एक आसन पर बैठ करके गरुणासन युक्त शब्द बता रहे हैं। उधर गजेंद्र के साथ बैठे, जो गजेंद्र चतुर्भुज स्वरूप में है, भगवान जिस आसन पर बैठे हैं गरुण जी पर, उसी आसन पर गजेंद्र जी बैठे हैं, ठीक दूसरे भगवान जैसे ही लग रहे थे। चतुर्भुज रूप में गरुण आसन मधुमुर नरक विनाशन गरुण आसन है, भगवान गरुण आसन है, गरुण जी पर चढ़कर चलते हैं। तो जिस गरुण जी पर श्री भगवान चढ़ते हैं उसी गरुण जी पर गजेंद्र जी चढ़कर गए। भगवान के अन्य भक्तों को लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, लेकिन गजेंद्र को लेने के लिए डायरेक्ट भगवान आए और लेकर के गए। लेकर के उनको कहां गए, स्वभवन, अपने भवन में भगवान गए, स्वभवन अपने धाम में अपने घर में ले गए गरुड़ जी के साथ। कैसा है घर, अद्भुत अलौकिक दिव्य, भगवान का अपना धाम अद्भुत है। और गजेंद्र के उद्धार की इस कथा को सारे गंधर्व सिद्ध विभुत देवता आदि उपगीयमान ये सब गा रहे थे। भगवान जब जा रहे थे गजेंद्र के साथ तो सारे देवता भगवान के इस जस भगवान के इस कीर्ति को गाते हुए जा रहे थे, भगवान की कीर्ति गाते हुए जा रहे थे। इस तरह गरुड़ जी के साथ गरुड़ जी पर चढ़कर भगवान गजेंद्र के साथ अपने घर बैकुंठ गए। ये अद्भुत भगवान की लीला है। एक बार मैंने कथा कहा था, जैसे कोई स्नेहवान पिता मोटरसाइकिल पर चढ़ करके अपने पुत्र को पीछे बैठा करके जा रहा हो, ऐसे भगवान चले। लेकिन हम उस समय जो उदाहरण दिए तो हम लोग मोटरसाइकिल को ही बहुत बड़ा समझ रहे थे। तो अब तो मोटरसाइकिल पर चढ़ करके जाना कहना ये उतना बिल्कुल ठीक नहीं लगता। तो उतना ही देना हो तो बहुत बेटर, बहुत बेस्ट कार में बैठ करके कोई जा रहा है, लेकिन ये सब उदाहरण भी कोई अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि गरुड़ जी एक तो अलौकिक वाहन है, उनकी जो स्पीड है, माइलेज है, वो सीमा के अंदर नहीं है। जिस समय गरुड़ जी चले लेकर के भगवान को और गजेंद्र जी को, तो देवता सब अपने अपने वाहनों पर भगवान के साथ जा रहे हैं। अब तो भगवान बैकुंठ जा रहे हैं तो ये लोग कम से कम अपने घर तक तो चले ही जाएंगे, स्वर्ग तक भी जाएंगे। और गरुड़ जी की रफ्तार तो इतनी तेज होगी कि अब फिर परलोक कीर्तन गाते गाते ही भगवान को प्रणाम करके अपने घर लौटे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि सब, और भी गंधर्व विभुद सिद्ध आदि सब समय भगवान का कीर्तन करते रहते हैं देवता लोग। यही देवत्व है, यही देवता का काम है, भगवान का जस गाना, भगवान की बातें सुनना, कथा सुनना। तो भगवान के अद्भुत कर्म है, नहीं कर्म, भगवान के कर्म को गा रहे थे, भगवान अपने अद्भुत भवन में चले गए। अब अपने भवन में चले गए उसके बाद कैसे कैसे स्वागत गजेंद्र जी का हो रहा है भगवान के साथ, कैसे आनंद, उसको क्या कहा जा सकता। तो भगवान चले गए लेकर। इसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी अब इस प्रसंग को सुनने वाले और कहने वाले को क्या मिलेगा ये बताएंगे। गजेंद्र को जो गति मिली भगवान का धाम, वही गति मिलेगी इस कथा को सुनने वाले को। ये कहा सुनने वाले को इस बात को सुखदेव गोस्वामी भगवान के वाक्य से ही प्रमाणित करेंगे। वे कहेंगे महाराज परीक्षित से कि हे महाराज, जब भगवान जा रहे थे गजेंद्र के साथ, जाने से पहले गरुड़ जी पर चढ़ करके तैयार थे जाने के लिए, उस समय भगवान ने ये वचन कहा था। तो सबसे बड़े प्रमाण भगवान है, भगवान ने स्वयं ही कहा था बैकुंठ जाने से पहले, गजेंद्र को लेकर जा रहे थे तो रुक गए और सारे देवताओं से ये बात कहे। वो बात कल कही जाएगी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।